ماد اول پستک دوسری لیکچر نمبر 12 اوم نمہ سیتے اوم نمہ سیتے सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वैच्छायाणम् नमो लोये सौवसाहूनम् भूतबलिप्रणीतम् तम् बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाधवलविख्यातम् महाबन्धम् नमाम्यहम्। यह श्री भगवान भूत बलि भट्टारक प्रणीत महाबन्ध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें दूसरी पुस्तक में दूसरा स्थिति बंधाधिकार जो है उसको देखते हुए हम आए अभी पृष्ठ संख्या 54 पर। 54 अभी हम यहाँ स्थितिबंध का काल देख रहे थे, उसमें जघन्य स्थितिबंध का काल देख रहे। ओह में तो हमने देख लिया है, अब आदेश में बात चली। ओह में हमने देखा था जघन्य का, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी काल एक अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट बारे में देखा था कि एक समय भी उत्कृष्ट हो सकता है, परंतु ओह की अपेक्षा जो जघन्य है वो एक समय नहीं होता है, क्योंकि जो स्थितिबंध के काल है अंतर्मुहूर्त तक उतना उतना होता रहता है। और अजगण्य का कितना है तो एक अनादि से अजगण्य हो रहा है, तो उसमें अनादि अनंत भी होता है, अनादि शांत भी होता है और सादी शांत भी होता है। सादी शांत का जगण्य काल एक अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परिवर्तन। उसके बाद अभी हम आदेश में देख रहे थे, नारकियों में और तीर्यंचों में देखा था, उसका विशेषार्थ अभी यहाँ नीचे तीर्यंच संबंधी विशेषार्थ देख रहे हैं। नीचे का पैराग्राफ सबसे नीचे, यद्यपि तीर्यंच गति में एक जीव के रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, तथापि ऐसा जीव तीर्यंच गति की सब योनियों में परिभ्रमण कर लेता है, इसलिए सात कर्मों के अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल इतना उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि इस जीव के पर्याप्त एक इंद्रियों में उत्पन्न होने पर जघन्य स्थितिबंध संभव है, यानी बादर पर्याप्त में। अतः यहाँ सूक्ष्म एकेंद्रियों के काल की मुख्यता से अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है, यानी वादर में उत्पन्न होने पर वो तो उत्कृष्ट स्थितिबंध करेगा ही करेगा। हमने यही जघन्य की भी बात है, उत्कृष्ट के लिए भी यही रूल बताया था, आपको याद होगा। अनुत्कृष्ट का भी उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक का, और वहाँ हमने यही डिराइव किया था कि वो सूक्ष्म में चला गया। तीर्यंच गति यानी सभी पर्याय में घूम रहा है, और जघन्य कब होता है? बादर पर्याप्त एकेंद्रिय में। तो बादर पर्याप्त एकेंद्र को छोड़कर अन्य जो काल है उसको लिया है। आप कहेंगे त्रस में गया, त्रस में भी जाता है, वहां तो बहुत कम है, 2000 सागर है, और सूक्ष्म में गया तो असंख्यात लोक है, तो इतने काल तक उसका अजघन्य रहेगा, और बाद में जब वो बादर एकेंद्रिय में आ जाएगा पर्याप्त में, तब उसका तो जघन्य होगा।
मेरा प्रश्न ये असंख्यात लोक बताया है, तो तीनों चक्र का बताया है, एक
सूक्ष्म नहीं, एक इंद्रिय की मात्र, एक इंद्रिय सूक्ष्म नहीं। सूक्ष्म में रहने का उत्कृष्ट काल मात्र असंख्यात लोग है, पर कभी सूक्ष्म कभी बांदर कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त होता रहे तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। अब वो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन में त्रस का भी काल इंक्लूड कर दो तो भी वो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन ही कहने नहीं आएगा, इसलिए पूरे तीरियन से गति का काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। आप कहेंगे कोई नित्य निगोद भी है ना, है पर वो तो अनादि से वहां पड़ा है, एक बार बाहर आता है अन्य पर्यायों में, तब की बात, सादी शांत काल की बात। ये तो हमें नित्य निगोद की ना, क्योंकि ये तो व्यवहार राशि की बात कर लेना थी। तो शेष कथन सुगम है, जब काल कहते तो आदि अंत वाला ही काल उसको गिनते। अब मनुष्य त्रिक में देखेंगे हम, सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंधका जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, जो हमने ओग में देखा था। और उसका स्वामी कौन है याद है? इसका स्वामी कौन है? सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंधका, इन्होंने बता दिया इसलिए याद आ गया। शपक श्रेणी में दसवें गुण स्थान में और नवे में, मोहिनी का दम नवे में, बाकी का दसवें में। अजघन्य स्थिति बंध का अभी मनुष्य त्रिक है, इसलिए अजघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है। अब अजघन्य तो अनादि से कर रहा था ना, तो एक समय कैसे हुआ? हाँ, उपशम श्रेणी से उतरते समय पहले अबंधक था, फिर बंध करने लगा तो अजघन्य हुआ और एक समय में मर गया। तो मनुष्य त्रिक वाली मार्गणा बदल गई, ओघ में घटित नहीं हुआ था, ओघ में ऐसा नहीं घटित हुआ था ना? तो यहाँ कहते अजघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण आती है। मनुष्य त्रिक जब कहते हैं तो क्या क्या लेना? मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य नहीं और सामान्य मनुष्य, तो उसकी अपेक्षा हमने देखा था कितने कहाँ पूर्व कोटि पृथक होते हैं, तो उतनी अजघन्य काल लंबा लंबा अधिक से अधिक काल। मनुष्य अपर्याप्तकों में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। मंदा बहनी कैसे होगा? हाँ, विग्रह गति में, विग्रह गति में कैसा होगा? देखो मनुष्य अपर्याप्त है, वो संगी पंचेन्द्रिय है। अब कोई एक इंद्रिय से कहो या द्विंद्रिय आदि से हो या असंगी तक के कोई भी जीव आता है उसमें, तो वो असंगी के योग्य स्थिति बंद करेगा। तो ये विग्रह गति में असंगी के योग्य स्थिति बंद होता है तो वहां एक समय दो समय, क्योंकि इससे ज्यादा तीन समय तो उसको नहीं लगेगी, क्योंकि तीन मोड़ से नहीं आएगा। पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय में आने वाला जीव तीन मोड़ नहीं लेता, एकेंद्रिय से एकेंद्रिय में जाने वाला वो हो सकते हैं। अजघन्य, ये समझ में है ना बात? एक समय और दो समय, अजघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल दो समय कम खुदा भव ग्रहण प्रमाण। अब क्या कहना चाहते? अजघन्य कोई एक जीव मनुष्य पर्याप्त आया है तो वो अभी जघन्य पहले एक या दो समय तक कर सकता है, तो जघन्य के बाद क्या करेगा? तो अजघन्य ही करेगा, तो अजघन्य का कम से कम काल लेना है तो ये दो समय हम माइनस कर सकते हैं। ये जो क्षुद्र भव जो है उसका लब्ध्य पर्याप्त का, उसमें से ये दो समय माइनस करेंगे तो अजगण्य का जघन्य काल हुआ, जघन्य काल
माइनस करेंगे,
माइनस करेंगे
नहीं करेंगे
और उत्कृष्ट काल उसका अंतर्मूर्त है, यानी
अपर्याप्त अपर्याप्त
अपर्याप्त से लगातार अपर्याप्त होता रहे तो अंतर्मूर्त, यानी काय स्थिति लेना, नहीं नहीं एक अंतर्मूर्त, एक अंतर्मूर्त में आठ भाव मनुष्य के होते हैं लब्धि अपर्याप्त के, लगातार की बात, यानी वो मार्गणा चेंज नहीं हुई और उसी मार्गणा में रहा तो मनुष्य लब्धि अपर्याप्त के कंटिन्यूस में आठ भाव हो सकते हैं।
जो असंगी मर के आया पहले दो समय तक के लिए उसे जगन ने किया,
हाँ
मैक्सिमम वो दोनों समय तक लगातार जगन रह सकता है,
रह सकता है दो समय तक रह सकता है,
हाँ। वो असंगी के करेगा,
हाँ वो असंगी के योग्य करेगा बंद, एक इंद्रिय से भी आया हुआ असंगी के योग्य जगन्य बंद कर सकता है, विशेषा मनुष्य त्रिक में सात कर्मों का जगन्य स्थिति बंधक क्षपक श्रेणी में उपलब्ध होता है और वो अंतर्मूर्त काल तक होता है, क्योंकि वहां स्थिति बंधक के अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में प्रमाण बदलते हैं, तो अंत में जो यहाँ कांडक मत कहो, कांडक तो स्थिति कांडक घात में होते हैं, स्थिति बंध में अपसरण होते गए और उसका लगातार उतना का उतना बंध अंतर्मूर्त तक होता है, तो यहाँ जो मनुष्य त्रिक लिया तो उसका तो क्षपक श्रेणी में होता है और मनुष्य अपर्याप्त में एक इंद्रिय आदि से असंगी तक के आया हुआ जीव लेना है, इसलिए वहां एक दो समय घटित होता है। आपका कुछ प्रश्न है ना? दो समय कम, हाँ दो समय जघन्य किया था और बाद में वो अजघन्य करेगा तो वो दो समय माइनस कर दे, एक जीव कोई भी जीव यदि कम, नहीं नहीं कोई भी एक जीव कम से कम अजगण्य करेगा तो कितने काल तक करेगा, तो जो एक इंद्रियादि से आया है दो समय तक जघन्य किया बाद में अजगण्य किया तो लब्धि अपर्याप्त की मिनिमम आयु लेना वहां पर, क्षुद्र भव खुदा भोगी कहते उसको। अब देवों में देखेंगे, देवों में सामान्य नारकियों के समान काल है, अब जघन्य की बात चल रही है तो यहां पर भी असंगी जीव उत्पन्न हो गए वनवासी और व्यंतर में, परंतु वो सामान्य देवों के लिए कथन लागू होगा, तो काल कितना होगा, जघन्य का काल कितना होगा, एक या दो समय, कम से कम एक समय, अधिक से अधिक दो समय। भुवनवासी और व्यंतरों में पहली पृथ्वी के समान काल है जो अभी हमने देखा, इतनी विशेषता है कि यहाँ अजगण्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट काल कहते समय अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। अब देवों में या भुवनवासी जहां की बात कर रहे हैं, भुवनवासी में बात कर रहे हैं तो भुवनवासी की उत्कृष्ट आयु बताना अजगण्य के लिए, जिसने जघन्य किया ही नहीं और अजघन्य उत्कृष्ट काल तक किया, कितना कहे आपने, उत्कृष्ट की बात चली जघन्य की नहीं। भुवनवासी कहेंगे तो असुर कुमार की एक सागर है तो उतनी लेना, अब ऊपर के देवों में भी अपने अपने ले लेना,
क्या लेंगे एक सागर, क्या लेंगे
वो जघन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट काल,
एक सागर माइनस दो समय,
नहीं माइनस क्यों करना, उत्कृष्ट काल लेना है, उत्कृष्ट काल लेना है, अगर जघन्य काल लेना है तो 10,000 वर्ष में से दो समय कम करेंगे, जघन्य आयु में से वो कम करेंगे, उत्कृष्ट लेना है तो दो समय कम किए बिना उत्कृष्ट आयु लेना, क्योंकि वहां तो असंगी से आए नहीं है, संगी से ही आया ऐसा लेना, ज्योतिषियों से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में इन्हीं के उत्कृष्ट सिद्धिबंध के काल के समान काल कहना चाहिए। जैसे उत्कृष्ट में है वैसे जघन्य में भी लागू होगा। क्या होगा जघन्य में? जघन्य का एक समय होगा ना, अंतर्मुख। अजगण्य का तो पूरा लाइफ टाइम ले सकते। जगन्य ने जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वहाँ लेना, अंतर्मूर्त होगा। उत्कृष्ट का देख लो आदेश में। तिरंज में देव भी ले लिए, 33 सागर जो लिया ना, अनुत्कृष्ट का। जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मुख। एक समय है ना, पेज नंबर 48। तिरंज के प्रकरण में ओक के समान बताया। फिर पंचेंद्रिय तिरंज अतिरिक्त मनुष्य अतिरिक्त सामान्य देव सर्वासिद्धि तक के देवों में सात कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख बताया। जब विशुद्धि ज्यादा होगी। देखो जगन्य बंध का स्वामी देखो, देवों में देखना है। नारकी के समान ही होगा इसी प्रकार ज्योतिषी से लेकर। पेज नंबर 42 पर आदेश में नारकी उनके है ना, उसमें लिखा है विशुद्ध अन्यतर असह्य समय दृष्टि सर्व विशुद्ध परिणाम वाला सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। और इसी प्रकार ज्योतिषियों से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवा। पेज नंबर 42 ये स्वामित्व है और पेज 48 में उत्कृष्ट का काल है। नहीं नहीं, उन्होंने बताया है ज्योतिषियों से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में इन्हीं के उत्कृष्ट स्थिति बंध के काल के समान काल कहना चाहिए। उत्कृष्ट का हमने 48 पेज पर देखा था। अभी दिखाया था ना 3 इंच में सामान्य देव और सर्वासिद्धि तक के देवों में बताया था। नारकियों में क्या हुआ था बेटी? नारकी में देख लो सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट दो समय, वो तो नारकियों में। वैसे तो यहाँ भी घटित हुआ था पर दूसरी नरक से उत्कृष्ट के समान प्ररूपणा बताई थी।
एक समय
वैसे जगन्य में भी घटा है। अब आगे बढ़ेंगे। सब एक इंद्रियों में, ये गति मार्गना हो गई, अब इंद्रिय मार्गना। सात कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का काल सामान्य तिरियंचों के समान है। तो एक समय किया था ना,
एक
कौन सा सब
में,
हाँ सब एक इंद्रिय, एक इंद्रिय बालर, एक इंद्रिय सूक्ष्म, पर्याप्त पर्याप्त वो सब। तो सामान्य तिरियंचों में अभी हमने देखा था एक समय और अंतर्मुख। और जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि जघन्य किया एक समय के लिए, अजघन्य किया फिर मार्गना बदल गए, मर गया। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, वह जघन्य का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि वो एक इंद्रिय में ही रहा और लगातार अजगन्य करता रहा। क्यों? वो सूक्ष्म में गया, जब मादर में आएगा तो कभी न कभी वो तो करेगा ही करेगा। असंख्यात
क्यों?
सूक्ष्म में रहने का काल है। मादर में रहते हुए कितने काल में करेगा अजगन्य?
मादर में रहते हुए वो अंगुल का से
करेगा। जैसे हमने उत्कृष्ट में देखा, ये लिखा है आगे क्या देखो, इनके बादरों में, पहले एक इंद्रिय इन जनरल बात की, अब बादर एक इंद्रियों में अजगन्य स्थितिबंध का, जगन्य का कहने का जरूरत नहीं है, एक समय और अंतर्मुख। तो अजगन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग, जैसे हमने अनुत्कृष्ट में देखा था। अब उसमें भी और एक पर्याप्त का भेद बताया, बादर पर्याप्तकों में अजगन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। बादर अपर्याप्तकों में अजगन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि अपर्याप्तकों में लगातार रहने का काल ही अंतर्मुहूर्त है। सूक्ष्म केंद्रियों में अजगन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यातवें भाग को। पर्याप्त अपर्याप्त दोनों
करेगा,
बादर सूक्ष्म दोनों
अपर्याप्त अंतर्मूर्ति रहेगा,
लगातार अपर्याप्त की बात
है।
परंतु वो तो बादर हो या सूक्ष्म हो, लगातार अपर्याप्त में रहेगा तो अंतर्मूर्त तक ही रहेगा। फिर वो आप नित्य निगोद की बात करते हैं, कभी बादर हुआ, कभी सूक्ष्म हुआ, कभी पर्याप्त हुआ, कभी अपर्याप्त हुआ, सब लेना उसमें।
पर्याप्त
वो तो सबके लिए, सभी एक इंद्रियों, ये तो निगोद की बात कर रहे हैं, निगोद पर्याप्त भी अंतर्मूर्त के लिए। जैसे अन्य पर्याप्त एक इंद्रिय जो है, यहाँ जो लिखा है ना, बादर पर्याप्तकों में जघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल संख्या हजार वर्ष। जब बादर पर्याप्त कहेंगे तो कौन सा काय वाला है वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया, अगर बादर पर्याप्त है तो संख्या हजार वर्ष है।
लेकिन एक अपने पढ़ा कि अपन बादर पर्याप्त का पढ़ रहे हैं, अगर टोटल बादर लेंगे तो कर्म स्थिति लिया था पहले, तो
कायिकों में लिया था ना,
बादर मतलब टोटल ले लें तो चाहे पर्याप्त कुछ भी हो बादर, मतलब पढ़ा था कल परसों
काय में लिया
अंदर,
अगर पूरा एक बादर एक इंद्रिय में नहीं लिया था, मात्र बादर एक इंद्रिय में नहीं लिया था, एक वो एक इंद्रिय अपन पूरा एक इंद्रिय नहीं ना, आप नहीं समझ, मात्र पृथ्वीकाय की बात करेंगे तो पृथ्वीकाय मरकर पृथ्वीकाय 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 हुआ, भले बादर हुआ, वो तो जलकायिक बादर नहीं हुआ, वनस्पति कायिक नहीं हुआ, अग्नि कायिक नहीं हुआ, उसकी बात एक एक काय में रहने का ये निकालो लिया। अच्छा पढ़ेंगे हम आगे आपके प्रश्नों का उत्तर। तो ये अभी हमने पढ़ा एक सूक्ष्म एक केंद्रीय में अजगन्य स्थिति बंध का अजगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्या त्रिभुज। उत्कृष्ट के बाद जब हमने उत्कृष्ट बंध काल देखा था उसमें इसकी चर्चा हुई थी, फिर दोबारा यहाँ करने वाले देखो इनके इनके नहीं सूक्ष्म एक इंद्रियों के पर्याप्त और अपर्याप्तकों में अजगन्य स्थिति बंध का जगन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी पर्याप्त में रहे अपर्याप्त में रहे लगातार सूक्ष्म पर्याप्त में रहने का काल अंतर्मूर्त, लगातार सूक्ष्म पर्याप्त में रहने का काल अंतर्मूर्त, कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त होता रहे तो असंख्यात लोग। फिर भी असंख्यात लोग प्रमाण काल तक सूक्ष्म एक इंद्रिय में रहेगा तो भी अजगन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट काल अंगुल का असंख्यात होगा। ये ख्याल में एक बात अब हम यहाँ विशेषार्थ पढ़ेंगे। सामान्य एक इंद्रियों में अजगन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट काल जिस प्रकार तिर्यंचों में घटित करके बताए हैं उस प्रकार से घटित कर लेना चाहिए। ये सामान्य केंद्र वहां बताया था कि वो लगातार तिर्यंच में बहुत टाइम रहे तो भी कभी ना कभी वो तो बादर एक इंद्रियों में उत्पन्न होगा ही और जगन्य बंद करेगा ही, तो सामान्य एक इंद्रियों के लिए ये कथन लागू होता है। तथा एक इंद्र के शेष अवान्तर भेदों में जब अवान्तर भेद गए थे तो उसी मार्गणा में रहने का उत्कृष्ट काल वहां सोचना है पहले में गए। यह काल उस उसकी काय स्थिति जानकर समझ लेना चाहिए। मात्र सूक्ष्म केंद्रियों में यह काल अपनी काय स्थिति प्रमाण प्राप्त न होकर अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण उपलब्ध होता है, इतना विशेष है। सूक्ष्म केंद्रियों की काय स्थिति कितनी है अश्विन भाई? असंख्यात लोग, और फिर भी अजगन्य का उत्कृष्ट काल कितना है? तो अंगुल का असंख्यात, ये डिफरेंस है। वैसे ही जनरल इन जनरल एक इंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, परंतु उसका अजगन्य का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है। ये जैसे हमने देखा वैसे यहाँ यही बात है। अब आगे बढ़े
तो असंख्यात अनंत काल पुद्गल परावर्तन कहते हैं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन तो काय स्थिति नहीं कहेंगे उसको?
कहेंगे ना, वो एक इंद्रिय की काय स्थिति कहेंगे, एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल, यानी भेद किए बिना एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल
असंख्यात पुद्गल परावर्तन,
असंख्यात पुद्गल परावर्तन,
उसमें अजगन्य रहने का काल असंख्यात
पुद्गल, यानी असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक एक इंद्रिय में रहा तो क्या इतने काल तक अजगन्य कर सकता है? तो कहते नहीं कर सकता, वो तो बारंबार बीच बीच में जगन्य करता ही रहेगा। तो उत्कृष्ट अजगन्य का कितना काल है? अजगन्य का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोग एक इंद्रिय की अपेक्षा, बादर की अपेक्षा, वो बादर पर्याप्त की अपेक्षा, हमने बादर इन जनरल बात की, लोग अंगुल का संख्या बादर पर्याप्त में लेते हैं तो अंगुल का नहीं, बादर मात्र बादर लेना, मात्र बादर एक इंद्रिय लेना तो अंगुल का संख्या था, बादर पर्याप्त में लेंगे तो संख्या हजार वर्ष, वहां तो काय स्थिति है?
बादलों की काय स्थिति कितनी हुई?
बादर एक इंद्रिय की काय स्थिति भी हमने असंख्यात लोग देखी थी ना, कितनी असंख्यात लोग ही देखी थी, सूक्ष्म की असंख्यात लोग है, बादर की मादर पर्याप्त की काय स्थिति
नहीं,
उत्कृष्ट को निकालो उसमें लिखा था, बादर पर्याप्त की काय स्थिती?
बादर पर्याप्त संख्या
अंगुल का संख्या
नहीं, नहीं, बादर की
सामान्य की
सामान्य बादर अंगुल का संख्या तो
अंगुल का
बादर एकेंद्रीय में रहने का उत्कृष्ट काल अंगुल का असंख्यात अभाव है। ये हमने 49 पेज पर देखा था। वैसे जहां अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल कहा था वही बात यहां अजगण्य के लिए लागू हो रहा है। यानी बादर पर्याप्त की काय स्थिति कितनी है? पर्याप्त की नहीं, बादर की।
बादर की अंगुल का संख्या
अंगुल का संख्या बादर एकेंद्रीय की वही लिया ही था। इन्हें बादरों में जब अजगन ने लिया तो उसका उत्कृष्ट काल लिया, बादर पर्याप्त को में लिया वो भी काय स्थिति का उत्कृष्ट काल लिया संख्या 1000 वर्ष, बादर अपर्याप्त को में लिया उसका भी उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त लिया। सूक्ष्म एकेंद्रियों में काय स्थिति असंख्यात लोक होने पर भी अंगुल का संख्या ये विशेषता है।
बादर में बिना पर्याप्त अपर्याप्त के भेद के बिना
जगन ने काल सब जगह एक समय से लेकर अंतर्मुहूर्त है। जगन ने बंध काल की आप पते बराबर है ना, आपको लगा उसका हाँ कैसे बहुत सीधी ये बात नहीं। सूक्ष्म एकेंद्रीय की काय स्थिति असंख्यात लोक है, फिर भी अजगण्य के लिए अंगुल का असंख्यात होगा। देखो काय स्थिति और ये कहां कहां डिफरेंस है, पूरे एकेंद्रीय की काय स्थिति असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, फिर भी अजगण्य का उत्कृष्ट काल कितना लिया?
असंख्यात
लोक, बराबर ये, क्योंकि उसमें एकेंद्रीय इन जनरल बात करेंगे तो पर्याप्त में जगन्य होता है तो उतने मादर पर्याप्त में आया ही नहीं, सूक्ष्म में चला गया वहां तो उसको। फिर मात्र बादर एकेंद्रियों की बात की तो बादर एकेंद्रियों की काय स्थिति कितनी है उसमें पर्याप्त पर्याप्त मत लगाना। बादर एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल अंगुल का संख्या तो उतना ही उसका अजगण्य का ले लिया, अपर्याप्त की कोई बात नहीं, वो तो अंतर्मूर्ति होता है। सूक्ष्म एकेंद्रीय इन जनरल तो उसमें रहने का असंख्यात लोक है, फिर भी उसमें जो अजगण्य का जो उत्कृष्ट बंध काल है वो अंगुल का संख्या,
अंगुल का संख्या
बादल नहीं बनेगा, सूक्ष्म मार्गना नहीं बदल ली है, सूक्ष्म में रहते हुए वो जगन्य कर ले, सूक्ष्म की अपेक्षा जगन्य कर लेगा। जब सूक्ष्म मार्गना हमारी सूक्ष्म एकेंद्रिय चल रही है तो बादर का जगन्य उसको जगन्य नहीं कहेंगे, सूक्ष्म एकेंद्रियों की जो रेंज है उसमें से जो जगन्य है उसको देखेंगे। यानी सूक्ष्म एकेंद्रिय में रहते हुए वो कभी ना कभी लंबे काल तक रहा असंख्यात लोक प्रमाण काल तक, परंतु मैक्सिमम अंगुल के असंख्यात भाग काल तक ही अजगन्य चलेगा, बाद में वो जगह नहीं करेगा ही करेगा, ये बात बताना चाहिए। विशेषाद भी अपना हो गया ना। अब हम आते हैं 56 पृष्ठ पर। द्विंद्रिय त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय तथा इन्हीं के पर्याप्तकों में 7 कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का काल सामान्य तिर्यंचों के समान है। एक समय जगन्य के लिए तो कुछ नहीं, एक समय और अंतर्मुहूर्त। अजगन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, जगन्य किया एक समय के लिए, अजगन्य किया मर गया, और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है, तो उनके मार्गणा का काल हो। द्विंद्रिय आदि तीनों अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय तीनों अपर्याप्तकों के समान काल है, वहां तो अनुत्कृष्ट का जो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ले लेगा, अजगण्य काल। अनुत्कृष्ट का कहा था मैं, अजगण्य काल। पंचेंद्रिय और त्रस तथा इनके पर्याप्त जीव में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का काल ओघ के समान है। एक समय से लेकर अंतर्मूर्त बताया था ना,
नहीं।
अच्छा अच्छा, पंचेंद्रिय और त्रस छपक लेना है, छपक छपक लेना अंतर्मूर्त। जघन्य भी अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त, सही है। अजघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त। अब देखो यह क्या कहा, अजघन्य का भी जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। देखो मन किसमें होगा, पंचेंद्रिय मरकर पंचेंद्रिय में जाएगा, त्रस मरकर त्रस होगा, तो उसके मार्गणा कहाँ बदले, एक समय कैसे होगा। मनुष्य त्रिक में तो हुआ था, क्योंकि वहां मनुष्य मरकर वो देव हुआ था, इसलिए वहां तो घटित हुआ था। इनके अपर्याप्तकों में या पंचेंद्रिय और त्रसों के अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय तीरेंच अपर्याप्तकों के समान काल है। एक समय जघन्य कितना, एक और दो समय लेना,
असंगी से आके ले,
हाँ असंगी से आया हुआ तो एक दो समय ले लेंगे,
ले ले,
विग्रह गति में और उत्कृष्ट काल अगर लेना है हमको तो अंतर्मूर्ति अनेक घो लेके, तो भी सब पृथ्वी का एक, अब काय मार्गणा की अपेक्षा बात करें, सब जल का एक, सब अग्नि का एक, सब वायु का एक, वनस्पति का एक, सब वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर और सब निगोद जीवों में सात कर्मों के,
सबका मतलब चार है,
सब लेना पर्याप्त, पहले में बादल सूक्ष्म पर्याप्त
चार,
तो कहते हैं जघन्य स्थिति बंध का काल एकेंद्रियों के समान है। जब हमने एकेंद्रीय किए, फिर एकेंद्रीय के बादर और सूक्ष्म भेद किए, फिर बादर में पर्याप्त पर्याप्त भेद किए, वैसे यहाँ कायिकों में भेद करना, तो डिफरेंस का इनमें अजघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्ट स्थिति बंध के उत्कृष्ट काल के समान है। जैसे हमने वो असंख्यात लोग कितना लिया था, कर्म स्थिति प्रमाण लिया था ना, निकालो अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल। ये पेज नंबर 50 पर है, अनुत्कृष्ट का वो हमने देखा था जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट असंख्यात लोग देखा था, यानी इन जनरल देखा तो असंख्यात लोग। देखो पेज नंबर 50 पर पृथ्वी का एक इन जनरल अगर लेंगे तो असंख्यात लोग, और अकेले बादर पृथ्वी का एक लेंगे तो कर्म स्थिति, बादर कहने से पर्याप्त पर्याप्त दोनों आ गया, अकेले पर्याप्त लेंगे तो संख्यात हजार। फिर से अभी कायिकों की अलग अलग बात की है, तो मान लेते कोई एक पृथ्वी कायिक लिया, वो पृथ्वी कायिक का उत्कृष्ट काल कितना होगा? तो असंख्यात लोग, असंख्यात लोग। बांदर पृथ्वी कायिक का कर्म स्थिति, बांदर पृथ्वी कायिक, हाँ मात्र बादर ले, और बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त में संख्या 1000 वर्ष। और बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त में अंतर्मुख, ऐसे नरक में भी घटित है, हर एक में। ये कायिक अलग अलग पांच कायिक लिए ना, अलग अलग सब में तो ऐसा ही करते। तो जैसे हमने देखा था अनुत्कृष्ट के बारे में 50 पेज पर, वैसा यहाँ होगा।
ये सूक्ष्म पृथ्वी कायिक में भी असंख्यात लोग के लिए ना, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अकेले लेंगे तो उसमें उत्कृष्ट काल कितना है?
उसमें उत्कृष्ट बादर अकेला बादर लेंगे कर्म से भी मात्र सूक्ष्म में, सूक्ष्म में रहने का काल कितना है पर्याप्त? पर्याप्त में दोनों में मिलकर अकेले अकेले में रहेंगे तो अंतर्मन, सूक्ष्म इन जनरल रहेंगे तो असंख्यात, परंतु फिर भी
असंख्यात हो गया।
अकेले पृथ्वी का एक में रहने का भी असंख्यात
हो गया,
अकेले सूक्ष्म में रहने का भी काल असंख्यात, मैंने कभी वो बादर में भी आ गया कभी सूक्ष्म में भी गया तो फिर भी असंख्य, उसका प्रमाण वेरिएशन है ना, बादर का भी काल इंक्लूड कर दें।
हमने जो पृथ्वी
गाय
का जो
असंख्यात
लोग कहा वो सूक्ष्म की अपेक्षा ही हुआ इसका,
दोनों लिया ना, जब
पृथ्वी बादल का तो प्रमाण है,
देखो ऐसा नहीं कह सकते।
अच्छा,
सूक्ष्म अपर्याप्त में यही रूल लगाओ आप, अपर्याप्त में रहने का उत्कृष्ट काल है अंतर्मन, उसमें पर्याप्त का मिला दो कितना हुआ? दो अंतर, दो अंतर
नहीं, दो भी होता।
हाँ तो अभी यहाँ तो रूप बदल दिया आपने, मात्र ऐड करके नहीं चलेगा, जो यथा योग्य है उसको।
सभी सूक्ष्म में लेने का काल भी असंख्यात, और बादर सूक्ष्म में लेने का भी काल,
बादर सूक्ष्म मात्र सूक्ष्म में, पृथ्वी का एक
सूक्ष्म,
ये यथार्थ वो कथन असंख्यात लोक ही होगा, असंख्यात लोक के असंख्यात भेद है, उसमें यथार्थ समझ लेना। आगे बढ़ेंगे क्या, और कहीं जाना है पृथ्वी का एक? जाना ऐसा नहीं। पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। हाँ, योग पलटता है उसका रहने का, फिर भी वो अजगन्य का ले लिया, जगन्य का भी और अजगन्य का भी। क्या अभी क्या कहाँ पढ़ा हमने? मनोयोगी वचन योगी की बात पढ़ी, काय योगी क्या पढ़ेंगे? काय योगी जीवों में सात कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, वैसे यहाँ पर भी लिया। अजगन्य स्थितिबंध का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, क्योंकि हमने देखा था कायोग असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक कायोग ही रहेगा एक इंद्रियों में, कायोग है, औदारिक कायोग नहीं का, का योग, कभी कारमण हुआ औदारिक मिश्र हुआ औदारिक का योग ही रहा, तो ये अनंत काल है। आप कहेंगे एक इंद्रिय में बार बार जघन्य करता है ना, तो कायोगी अपेक्षा वो जघन्य नहीं कहलाएगा। काय योग में जघन्य तो क्षपक सहने वाले को कहे, एक इंद्रिय की अपेक्षा हमने फिर से जब मात्रा अपने मार्गणा कौन सी एक इंद्रिय की मार्गणा चल रही थी, तो वहां कहा था असंख्यात लोक प्रमाण काल तक एक इंद्रिय में रहने पर भी इतने लंबे काल तक अजघन्य नहीं रहता। असंख्यात लोग में तो फिर दोबारा जघन्य होगा ही होगा बीच में। अब यहां बात चल रही काय योगी की, जैसे काय योग में अजघन्य में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। तो यहां क्यों लिया, तो कहते एक इंद्रिय के जघन्य को यहां जघन्य नहीं कहेंगे, क्योंकि काय योगी तो क्षपक श्रेणी में भी है, तो उसके लिए जघन्य कौन सा है, तो वो जो अंतिम जो स्थिति बंध है वो उसके लिए जघन्य।
और अंतिम
शपक श्रेणी में अंतिम स्थिति बंध है ना, वो जो दसवें के अंत में नौवे के अंत में क्या क्या, अरे वो जीव काय योग में है ना, उसकी मार्गणा काय योग की चल रही है। आप क्या कह रहे हैं, आपका कुछ करने औदारिक काय योग का थोड़ा ही बंद होता है, योग का कहाँ बंद होता है, आप औदारिक शरीर नाम कर्मों के बंद की बात कर रहे हैं, उसकी कहाँ बात चल रही है, नहीं समझा, कुछ कंफ्यूजन है। यहाँ हमारी उत्तर प्रकृति की बात ही नहीं हो रही, मूल प्रकृतियों की बात हो रही, सात कर्मों का जघन्य कब बांधता है जीव, वो तो उसी की बात की मैंने, बांधने वाला कौन है, काय योगी, काय योगी, अभी हम मनुष्य है के उसकी बात नहीं कर रहे, हमारे मार्गणा कौन से, काय योगी। तो काय योग में जघन्य कब होता है, शपक श्रेणी में, जैसे मनोयोग में भी हमने देखा था, परंतु काय योग एक इंद्रिय में होते हुए भी वहां उसका जघन्य नहीं होता, इसलिए एक इंद्रिय में लगातार काय योगी की अपेक्षा एक इंद्रिय में जो बंद किया था उसको अजघन्य कहा। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एक इंद्रिय में उसने जघन्य बंद भी किया, वहां मार्गणा अपने इंद्रिय के एक इंद्रिय की चकड़ी, अभी मार्गणा हमारी काय योगी की है, तो काय योगी में जहां कहीं भी जघन्य होगा उसको जघन्य कहेंगे। ख्याल में आती है डिफरेंस,
एक समय भी किसमें
जघन्य का कहां का,
जघन्य का
एक मिनट, जघन्य काल बताए, हाँ वो तो उसका काय योग से वचन योग हो गया, मनोयोग, हाँ योग पलटने की अपेक्षा, और जघन्य का भी जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अनंत काल बताया, वो तो घटित होता ही है।
ये एक समय अजगर का
योग योग पर
योग योग योग
अजगन्य का तो ऐसा भी हमें उतरते हुए श्रेणी श्रेणी में उतरते हुए भी होगा,
वहाँ पे तो अजगर
क्यों नहीं,
पर वहाँ पे तो काय योग
क्यों,
काय योग में मरण होगा तो काय योग ही देगा,
श्रेणी उतरना चालू किया
और एक समय में मरण
होगा, अजगन्य बंद कर रहा था,
अजगन्य किया और एक समय में मरण,
अजगन्य कर रहा था और फिर वो अन्य योग में से काय योग में आ गया, ऐसा लिए ना, बंद चल रहा था अजगन्य बंद चल रहा था, काय योग में आया अजगन्य की और मरण को, वो तो कहीं पर भी होगा, उसके लिए श्रेणी की भी जरूरत नहीं, समझे,
एक बार काय योग होगा तो वो अंतर्मुख
का मरण पर भी कायोग ही रहा, कायोग का कायोग ही रहा, अजगर नहीं रहा। हाँ, तो वो श्रेणी में से उतरते समय
योग बदल गया,
यानी ऐसा भी लेते ना, पहले बंद ही नहीं कर रहा था, फिर जो बंद गया तो अजगण्य हुआ, योग पर एक समय नहीं, पहले योग था परंतु तभी बंद नहीं हो रहा था, अब बंद होने लगा और योग पलट गया। उसकी बात नहीं है, पहले बंद नहीं था तो काय योग था, अब बंद शुरू हुआ तो एक समय के लिए काय योग ही रहा और फिर वर्ण वचन योग या मन योग हुआ, तो एक समय के लिए काय योग में अजगण्य हुआ, ये घटित होता है। देखो अभी औदारिक कायोगी जीवों में लगा रहे, पहले तो कायोगी इन जनरल बात की थी, औदारिक कायोगी जीवों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये जो अभी हमने ऊपर देखा था वैसा ही इसमें भी होगा, अजघन्य स्थितिबंध का औदारिक कायोग में अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है। जो पृथ्वी का एक में हम देखते हैं, ये जो कुछ कम किया, क्यों किया कुछ कम, औदारिक मिश्र का कम कर, औदारिक मिश्र का योगी, वैकृत मिश्र का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों में अपने उत्कृष्ट स्थितिबंध के समान काल है। औदारिक मिश्र में जघन्य कौन करेगा, क्या कहते हैं
औदारिक मिश्र में,
औदारिक मिश्र में
पर्याप्त,
औदारिक मिश्र में पर्याप्त कहाँ से आएगा,
पर्याप्त जीव का जो एक मिश्र काल है,
तो उसको पर्याप्त जीवों का एकेंद्रीय मिश्र काल ऐसा,
एकेंद्रीय
पर्याप्त का औदारिक मिश्र काल,
एकेंद्रीय पर्याप्त से एकेंद्रीय पर्याप्त में जा रहा है और उसका मिश्र का योग में उतना ही होगा कि
एक समय तो ले सकते हैं ना इसको, देख निकलो उत्कृष्ट 51 ले, औदारिक की बात की थी वहां पर, फिर औदारिक मिश्र की मिला क्या ऊपर से छठी लाइन 51 पेज, तो कहते सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मुख,
वो भी हमने देखा था अंतिम समय में उत्कृष्ट होता है।
हाँ, फिर भी अंतर्मुख में लिया उन्होंने, वैसे जघन्य का वो लगातार उतना जघन्य का जघन्य होता रहा, इतना ही लेना। हाँ तो उतनी वो यथा एक समय, एक समय से एक समय के लिए जघन्य किया, वैकृत मिश्र का योग में भी ऐसा, और आहार उनके योग्य जघन्य ले लिया, जैसे अन्यत्र एक समय और अंतर्मुख घटित होता है वैसे उनमें घटित किया। मिश्र का योग में तो उसके उस पर्याय की अपेक्षा जितना होगा उतना ही होगा, कहाँ से आया होगा तो
उसकी कोई अपेक्षा,
यहाँ भी पंच इंद्रिय में से एक इंद्रिय में जाएगा तो कुछ स्थिति बंध कम करेगा तो ऐसा ही नहीं है, उल्टा है। असंगियों में से संगी में जाने के लिए विग्रह गति में है, वैसा विग्रह गति का भेद हुआ। संगी में से एक इंद्रिय में गया तो संगी के योग्य तो नहीं करेगा।
एक समय समझ नहीं आ रहा,
एक समय के लिए जघन्य किया उसमें।
अच्छा,
जघन्य का कहीं भी घटित होता है, वो क्षपक श्रेणी वाला जघन्य मत, उस मार्गणा का जघन्य। जैसे हम उत्कृष्ट एक समय के लिए देखते थे या अंतर्मूर्त देखते थे, वैसे इनके जैसे बादर पर्याप्त एक इंद्रिय में क्या होता है, जघन्य कितने काल तक होता है, एक समय से लेकर अंतर्मूर्त, वैसे इनके लिए जघन्य कितना होगा, एक समय से लेकर अंतर्मूर्त। वैकृत कायोगी जीवों में मनोयोगियों के समान काल, उसमें भी एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक होता है। जगन्य का भी और अजगन्य का भी। इसी प्रकार आहारक का योगियों के जानना चाहिए, कार्मण का योगी और अनाहारकों में अपने अपने उत्कृष्ट स्थिति बंध के समान काल है। कार्मण का योगी का काल ही तीन समय है, अनाहारक का वही है ना, जो उतना है बंध में उसको उतना ही ले लेना। जो कार्मण का योग का है वही उसी का भी।
ये शासन से तीन गुण है
क्या क्या, शासन
के जगन्य काल से, शासन के जगन्य काल एक समय बोलते हैं तो उससे जगन, शासन के जगन्य काल से तीन गुण
है। अभी आगे देखते हैं। विशेषार्थ का योग में जघन्य स्थिति बंधक क्षपक श्रेणी में होता है, इसलिए इनमें अजघन्य स्थिति बंधक का उत्कृष्ट काल अपनी काय स्थिति प्रमाण घटित हो जाता है, जो कि अनंत काल अर्थात असंख्यात उज्जवल परिवर्तन प्रमाण उपलब्ध होता है। शेष कथन सुगम है, इसकी तो चर्चा हमने विस्तार से की। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का काल ओग के समान है, क्षपक श्रेणी में। अंतम अब क्षपक श्रेणी में वहां कहा, जहां तक उसका उदय है वहां ले लेना। स्त्री वेद में अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल सौ पल्य पृथक प्रमाण, ये एक समय है तो श्रेणी से उतरते समय। और उत्कृष्ट काल सौ पल्य पृथक हो तो स्त्री पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल लिया, तो उसने अजगण्य ही स्थिति बंद किया, इन्हें श्रेणी चढ़ी ही नहीं, और वो भी क्षपक श्रेणी चढ़नी है ना, तब उसका होगा अंतर्मूर्त वाला। यानी जघन्य तो तभी होगा जब क्षपक श्रेणी चढ़ेगे, तो उसका जघन्य होगा अंतर्मूर्त, और बाकी समयों में अजघन्य ही होगा। अब पुरुष वेद में जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक है, और जघन्य काल हाँ, यहाँ एक समय क्यों नहीं दिया, मर कर भी पुरुष वेदी होता है इसलिए।
मेरा तो क्वेश्चन है, इसी वेद में जब हमने एक समय कहा तो वो मरा तो पुरुष वेद हो गया, तो मारगणा भंग हो गई उसकी,
बिल्कुल।
लेकिन पुरुष वेद में उसका जगन नहीं होगा, वो
क्या
जो कहते हैं पुरुष वेद का जगन काल अंतर्मूर्त है।
पुरुष वेद में किसका जगन्य काल, अजगन्य का, अजगण्य काल
जगन्य काल अजगण्य काल
अजगण्य का जगन्य काल
अच्छा
वो कैसे घटित होगा बोलो
अजगण्य का
जगन्य काल बोलो नहीं उसका पर्याय बदल गया पुरुष वेद का कम से कम आयु एक अंतर्मुख वो लेना यहाँ
मिनिमम आयु
पर्याप्त जीवों के होगा ना पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों की मिनिमम आयु अंतर्मुहूर्त है वो लेना यहाँ वो श्रेणी में मरकर जाने वाला नहीं लेना क्योंकि तो लगातार अजगण्य का ही बंद कर जब तक पुरुष वेद में है जैसे श्रेणी में घटित होता है वेद बदलकर वो अन्य पुरुष में वैसा यहाँ नहीं होता तो पुरुष वेद में जगन्य का जो अंतर्मुहूर्त बताया एक भव लेना अंतर्मुहूर्त अलग लिया
श्रेणी से अंतर इसमें उपलब्ध नहीं होता है
अच्छा अच्छा यानी उन्होंने फिर दोबारा श्रेणी चढ़ाई पर्याप्त का अंतर्मुहूर्त इससे बड़ा है अच्छा हमने तो एक भोग किया परंतु दोबारा श्रेणी चढ़ी उसने विशेषार्थ में वही दिया और उत्कृष्ट काल सौ सागर पुतक का प्रमाण तथा नपुसक वेद में जगन्य काल एक समय स्त्री वेदी के समान और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल जैसे भी उसका नपुसक वेद ही रहेगा इतने काल तक और उसका वो अजगण्य ही कहलाएगा क्योंकि उसका भी जगन्य शपक श्रेणी में अपगत वेद में सात कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का काल ओग के समान और जगन्य स्थितिबंध का काल एक समय है क्योंकि उतरते हुए जहां बंध शुरू किया और एक समय में मरण हुआ तो सवेदी हो गए उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्राय संयम में छह कर्मों का काल है क्योंकि वहां छह ही है ना सूक्ष्म सांप्राय विशेषार्थ जो जीव पुरुष वेद से उपशम श्रेणी पर आरोहण करता है वो उपशम श्रेणी में मरण कर नियम से पुरुष वेदी ही होता है इसलिए इसमें अजगण्य स्थितिबंध का जगन्य काल एक समय उपलब्ध नहीं होता यही कारण है कि पुरुष वेद में सातों कर्मों के अजगण्य स्थितिबंध का जगन्य काल एक समय नहीं कहा फिर भी यह काल कैसे प्राप्त होता है जो अंतर्मूर्त कहा वो कैसे होता है वह घटित करके बतलाते हैं एक पुरुष वेदी जीव उपशम श्रेणी पर चढ़ा और उतरकर वह सात कर्मों का अजगण्य स्थितिबंध करने लगा पुनः अंतर्मूर्त के बाद वह उपशम श्रेणी पर चढ़ा और अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में उसने मोहनी की तथा सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में उसने शेष छह कर्मों की बंध विच्छित्ति की अनिवृत्तिकरण के लिखा है ना पुरुष वेद के अंतिम समय में दोनों उसके लिए तो बंद रुक गया मार्गणा बदल गई अपगत वेदी हो गया और पुरुष वेद के अंतिम समय में पुरुष वेद के अंतिम समय में मोहनीय की तथा सूक्ष्म मोहनीय की यानी सातों कर्मों की उसने शेष छह लिए ना, तो सातों कर्मों की बंद विच्छित्ति भी नहीं कह सकते उसके लिए, वहां तक वो पुरुष हो गए, मार्गणा बदल गए उसके अंतिम समय में, और अंतिम समय तक बंद किया, अंतर्मुख के बाद उपशम श्रेणी पर चढ़ा पुरुष वेद के अंतिम समय में बंद करके मार्गणा बदली। अपगत वेदी हुआ, इस प्रकार यदि देखा जाए तो यहाँ सात कर्मों के अजगण्य स्थितिबंध का जगण्य काल अंतर्मुहूर्त उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि पुरुष वेद में यह काल उक्त प्रकार से कहा है, शेष कथन सुगम। तो फिर उसको क्षपक श्रेणी क्यों नहीं चढ़ाए? नहीं काले ने वो लास्ट में जगण्य करेगा ना, उसके पहले तो अजगण्य होगा, अंतिम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी।
हाँ,
दोबारा श्रेणी चढ़ाई तो नहीं लेना अभी, हम बाकी कुछ नहीं बात करेंगे। यानी अभी ये तो विशेषार्थ में आ गई बात, यानी एक पर्याप्त भाव से ये छोटा होगा, हो सकता है। हाँ, पहली भूल मिल गई यहाँ विशेषार्थ में। हाँ, यानी अंतिम अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में और वो सूक्ष्म
भाग
दो
में,
कोई बात नहीं। हाँ, मैंने पुरुषवेद मार्गणा नहीं रहती,
मतलब
पुरुषवेद मार्गणा नहीं रहती इस, वो तो अपेक्षा। अब आगे बढ़ेंगे, क्रोधादि चार में ये वेद मार्गणा हो गए। अभी सात कर्मों का उक्त काल मनोयोगियों के समान है। अब जो क्रोधादि चार कहेंगे तो अपने अपने अंत में ले लेना उसका। तात्पर्य है कि जिस प्रकार मनोयोगियों के सात कर्मों के जगन्य और अजगन्य स्थितिबंध का काल कहे आए हैं, तो हमने मनोयोगी में देखा था एक समय से लेकर अंतर्मुहूर्त तक।
अजगन्य के एक समय होगा,
देखो उनका जगन्य तो
अपने अपने उदय में लगती
नहीं, जैसे श्रेणी में योग पलटता है वैसे क्रोधादि नहीं पलटते। एक बार उन्होंने क्षपना शुरू की तो जगन्य का अंतर्मुहूर्त होगा। ऊपर लिखा ना कोदा विचार सत्यन्नम कम्मान मनोभंगो, मनोयोगियों के समान भंग है। उत्कृष्ट में तो हम कहते थे कि वहां पर बदल जाते थे क्रोध में हमारे लोग वगैरह, यहाँ तो वो नहीं होगा। श्रेणी में जिस कषाय से श्रेणी चढ़ता है क्रोध वाला, क्रोध के उदय तक तो क्रोध बदलकर मान नहीं होगा। हाँ, जगन्य काल अंतर्मूर्ति वही अंत, वही उसके लिए उत्कृष्ट है।
और अजगण्य का एक समय नहीं होगा ना, नहीं श्रेणी में से उतरा रोग का उदय, लोक का उदय और एक समय में मर गया तो वो लोक ही रहेगा ना,
उसका वही वही कषाय चल रहा है ना,
वही चलेगा तो वो भी अत्यंत मुक्ति होगा।
और जगन्य का इन्होंने कहा था, जगन्य और अजगन्य का वो तो श्रेणी में उतरते समय होगा, परंतु नहीं, एक अपेक्षा ये भी आती है ना, वहाँ लोग का उदय है देव में,
नहीं तो लोग का एक समय नहीं होगा,
लोग का नहीं होगा,
बाकी का अपना लोग के समान ले लेते आदेश।
हाँ, कहाँ लिखा है मनोयोगी में, कहाँ पर? उन्होंने अच्छा अच्छा हाँ मनोयोगियों के समान लिखा है, उसके बदले योग के समान है ना, पर ये मूल में लिखा है उन्होंने, यानी यहाँ तो ये बात होती है कि जिस कषाय से श्रेणी चढ़ता है वो तो कषाय नहीं, जिस कषाय से श्रेणी चढ़ता है वो बदलता नहीं है। हाँ, तो क्रोध के लिए जगन्य, जब उसका उदय मिटता है तब क्रोध के लिए जगन्य,
तो
मान के लिए जगन्य, वो उसका भी मान का जगन, मान के लिए उसका जगन्य, वो मान के रूप में ट्रेन होगा, मान के उदय से चढ़े या क्रोध के उदय से चढ़े, मान के अंतिम समय में वहाँ जो स्थिति बंध है वो उसके लिए जगन्य कह रहे हैं। तो एक समय जगन्य कैसा होगा ये प्रश्न है अपना, अंतर्मुक्त होगा ऐसा लगता है, हाँ, और श्रेणी उतर कर मरे तो भी कषाय वही मार्ग ना चल रहे हैं ना, आगे की मार्गणा देखते हैं। मत्य ज्ञानी और शुद्धा ज्ञानी जीवों में मिथ्या दृष्टि है, सात कर्मों के जगन्य स्थिति बंध का जगन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मुख, अभी कोई नहीं बोले, कौन बताना चाहता है? पहले मैं पूछू, आपने बता दिया। हाँ हाँ, कौन सा लब्धि पर्याप्त, आप क्या कहते हैं? नहीं मालूम, प्रश्न है, मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी जीवों में जघन्य स्थिति बंध कौन करेगा? हाँ, बांदर एक इंद्रिय पर्याय, तो वो उसका एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मुख हमने देखा। अभी मत्य ज्ञानी श्रुत ज्ञानी में अजगण्य स्थिति बंध का जगन्य काल अंतर्मूर्ख, ये अमूर्त कुछ होगा, अमूर्त अंतर्मूर्ख, और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण जो हमने एक इंद्रिय में देखा था, याद है? एक इंद्रिय के सूक्ष्म में चला गया, असंख्यात लोक तक रहा, तो उसने मति अज्ञानियों में जगन्य किया ही नहीं, अजगन्य ही करता है, ये असंख्यात लोक ख्याल में आती बात ये। हाँ हाँ, और स्लोली लेंगे, हाँ लेंगे। अच्छा देखो, फिर से मार्गणा कौन सी चल रही है? मार्गणा मिथ्या दृष्टि की चल रही है। मिथ्या दृष्टि संगी पंचेन्द्रिय जगन्य स्थिति बंध कितना करेगा? मिथ्या दृष्टि संगी पंचेन्द्रिय जगन्य बंध कितना करे? सात कर्मों की बात चल रही ना अपनी। मिथ्या दृष्टि यानी अपनी संगी पंचेन्द्रिय जो एक इंद्रिय आदि से आता है विग्रह गति में, वो असंगी जैसा बंद करता है एक साथ, अदरवाइज अंत कोड़ा कोड़ा उसका होता है, बराबर है ना? तो हमें मिथ्या दृष्टियों में जगन्य बंद करने वाला जीव लेना है, तो कौन सा होगा? वो बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, वही करेगा, मिथ्या दृष्टियों की बात करेगा। उससे जगन्य कहां होता है? तो क्षपक्षेणी में, क्षपक्षेणी। हाँ, यानी वो अभी मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि की मार्गणा, यानी वो सोचो मत, ओग की अपेक्षा एकेंद्रियों से भी जगन्य स्थिति बंध कौन करता है? तो क्षपक्षेणी वाला। मिथ्या दृष्टियों में अभी वो क्षपक्षेणी इंक्लूड नहीं होती है, तो यहाँ जगन्य कौन करेगा? एकेंद्रियों में भी जगन्य करने वाला कौन है? बादर एकेंद्रिय पर्यावरण, तो ये जगन्य करेगा। तो कहते कि जो जघन्य नहीं कर रहा है, अजघन्य कर रहा है, तो अजघन्य में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? तो असंख्यात लोग, यानी इतने काल के बाद वो जरूर बादर एक इंद्रिय पर्याप्त में जाएगा और बंद करेगा। इतने काल तक ही वो इतना ही उसका अंतर हो सकता है, जघन्य का काल अंतर जो है वो इससे बड़ा नहीं हो सकता, यानी इतने ही काल तक वो अजघन्य कर सकता है। ये बात ख्याल में? अब आगे इन्हें अपनी मार्गणा कौन सी है ये बात करना, और उसमें जघन्य कौन कर रहा है उसको देख सकते। अब विभंग ज्ञान में, तो विभंग ज्ञान तो संगी पंचेन्द्रियों को ही होता है, और क्या अपर्याप्त अवस्था में होता है उसको विभंग ज्ञान? तो नहीं होता। सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, तो तब कौन करता है ये? प्रायोग लब्धि में लिया,
नहीं सॉरी, वो अंतर्मूर्त का तो असंगी पंचेन्द्रिय जैसा करेगा, नहीं सॉरी वो नहीं करेगा, ये तो
असंगी इसलिए नहीं लेना कि उसको अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होता।
तो ये
प्रायोग लब्धि के बाद भी कुछ लब्धियां होती है कि नहीं होती? करण लब्धि तक उसको क्या होगा?
करण लब्धि तक तो जाएगा, अच्छा जाएगा,
क्यों नहीं जाएगा? देव मिथ्या दृष्टि है और उपशम सम्यक तो प्राप्त कर रहा है,
तो
सातिशय मिथ्या दृष्टि संयम के अभिमुख लिया। अच्छा, यहाँ तो संयम के अभिमुख वाला है, देव भी नहीं लेना। जो विभंग ज्ञानी मनुष्य है
और
सातवें भी जाने वाला
है,
इतना सातिशय कितना पेज पर लिया स्वामी? तो उसका इन्हें संयम 45 संयम के अभिमुख लेना ना, अभिमुख कहो सन्मुख कहो। तो जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त इसलिए कहा, हाँ, क्योंकि उसका जो बंधापसरण होता है और घटकर जो स्थिति बंध होता है तो अंतर्मूर्त तक होता ही उतना, तो इसका अंतिम स्थिति बंध लेना है उसका। करण लब्धि में अंतिम स्थिति बंध कहेंगे, तो लगातार अंतर्मूर्त तक होता है। अजगन्य स्थिति बंध का किसकी बात चल रही है? विभंग ज्ञान में अजगन्य स्थिति बंध का जगन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर।
तो
कैसे सासाधन में लेना? विभंग ज्ञानी था, समय दृष्टि हुआ, औपशमिक हुआ, तो अवधि ज्ञानी हुआ देव। सासान में आया तो एक समय के लिए विभंग ज्ञानी हुआ और मर गया, तो मार गणना बदल गई उसकी, विभंग ज्ञान नहीं रहा उसको भी, मनवर कर अन्य गति में गया। कौन सा मनुष्य के लिए जो मैंने देव में देव में तो नियम से है, भव प्रत्यय है, देव में यही बात होगी। नहीं तो अजगण्य स्थिति बंध का अजगण्य काल कैसे घटित करेंगे? विभंग ज्ञान में सासादन में मरेगा तो ही होगा, क्योंकि वो भव प्रत्यय है, तो सासादन में विभंग ज्ञान होगा ही होगा। और फिर देव पर्याय छूट गई तो विभंग ज्ञान नहीं रहा उसका। ये लगता है, और दूसरा कोई होगा तो यानी मरण के बाद विभंग ज्ञान तो कंटिन्यूअस नहीं रहता होगा, उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर ये तो घटित होता है। कुछ कम इसलिए कहा, क्यों कहा कुछ कम, क्यों कहा? हाँ, अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं पाएगा, वहां पर्याप्ति पूर्ण होने पर विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है। आभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयत, इनमें जघन्य स्थितिबंध का काल उत्कृष्ट के समान है, यानी वो अंतर्मूर्त तक रहेगा, है ना? देखो मति शुद्ध अवधि ज्ञानी में तो हम कहेंगे वो तो दसवें गुणस्थान में, नवे गुणस्थान में, मनोपरि ज्ञानी में भी वही बात होगी, संयतों में भी घटित होगा, सामयिक छेदोपस्थापने नवे के अंत में घटित होगा, वहां पर भी वो बंध के एक एक अंतर्मूर्त होते हैं, संयत में भी ऐसा ही होगा, परिहार विशुद्धि संहिता संयत, हाँ यानी अंतर्मूर्त होगा, जगन्य का अंतर्मूर्त, जगन्य भी और उत्कृष्ट भी जगन्य का। और अजगण्य का अब उसके अपने अपनी मार्गणा समझ में, कुछ कम पूर्व, कुछ कम पूर्व, 8 वर्ष कम कर दे। चक्षु दर्शन वालों में त्रस पर्याप्तकों के समान है, वह चक्षु दर्शन वाले और भव्य जीवों में ओव के समान है। वह चक्षु दर्शन तो 12 गुणस्थान तक कायम रहते हैं अनादि से, इसलिए उसमें क्षपक्षणी घटित होगी, भव्य जीवों में भी क्षपक्षणी घटित होती है, तो भव्य में भी वही बात होगी। इतनी विशेषता है भव्यों में अनादि और पर्यवसित विकल्प नहीं होता, यानी अनादि अनंत वाला अपर्यवसान, हाँ जो कायम रहता है। तो अभव्यों में जघन्य किसके होगा मंजू बहन? अभव्यों में जघन्य स्थिति बंध कौन से जीव को होगा? अभव्यों में हाँ होगा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? स्थिति बंध किसके होगा, अभव्यों में जघन्य किसके होगा? प्रश्न तो वही है, वो तो समय दृष्टि होने वाला नहीं, तो उनके लिए मिनिमम बंध कौन करेगा जी? हाँ, बाधर एक इंद्रिय पर्याप्त, अभी हमने मिथ्या दृष्टि में देखा था ना, वही लागू होगा।
ये तो आंसर सही है।
कौन सा?
ये तो बोला अभव्य में बाधर क्या होगा।
हाँ,
आपने कौन सी इंद्रिय बंध लिए? अभव्य लिए ना,
अभव्य
तो अभव्य तो प्रायोग लग्न भी कर सकता ना,
वहाँ अंत कोड़ा कोड़ी होगा, प्रायोग लब्धि करने वाला संगी पंचेंद्रिय है, और वो कितना करेगा बंदर, अंत कोड़ा कोड़ी सागर, और ये एक सागर में भी पल्ले का संख्या तो बहुत कम बात है ना सही। अवधि दर्शनी सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि जीवों में काल अपने अपने उत्कृष्ट समान है, वो हमने देखा था उसमें सब में, यानी अजगन्य का जो काल है तो उसके अपना अपना उत्कृष्ट काल ले लेना वहां। अब यहीं रुकेंगे हम। जावानी